अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 4 है, किताब 10 करोड़ में दो शैतान, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ मजहर कलीम एम ए। तो आइए सुनते हैं पार्ट 4। किन के लिए काम कर रहे हो? इमरान की आवाज में तलवार जैसी कार थी। 10 करोड़ में दो शैतान के लिए, अफजल ने अटकते हुए कहा। क्या? इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। नवाब साहब तो खैर शुरू से ही हैरत के शदीद झटकों की जद में थे, लेकिन इस बार इमरान भी वाकई हैरत ज़दा रह गया। 10 करोड़ में दो शैतान, इमरान ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, ये इनके ग्रोह का मखसूस नाम है और यही इनका कोड है, अफजल सब कुछ बताया जा रहा था। खूब वाकई बेहतरीन नाम है, बड़े जिंदा दिल मालूम होते हैं। लेकिन वो दो शैतान कौन कौन से हैं? इमरान ने बातों ही बातों में अचानक पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, अफजल ने जवाब दिया। क्यों मालूम नहीं? क्या वो तुम्हें अपने सामने बैठे हुए नजर नहीं आते? इमरान ने डांटते हुए कहा, और फिर वो नवाब साहब की तरफ देखकर घबरा गया, जो एक लम्हे तो बात समझे नहीं थे और जब समझे तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नवाब साहब ने शायद ऐसी गुस्ताखियां जिंदगी में कभी नहीं सुनी होंगी, और फिर भला मजाल भी किसकी थी नवाब साहब के सामने कोई ऊंचा बोल जाए। गुस्ताखी तो एक तरफ रही, लेकिन ये इमरान जब से आया था बराबर इन पर चोटें कर रहा था। इमरान नवाब साहब गुस्से से धाड़े। शैतान नंबर 2 कहिए जनाब, इमरान ना कहिए, इमरान ने इन्हें तकरीबन पिचकारते हुए कहा। वो एक लम्हे तक इन चेहरे सुर्ख आंखों से इमरान को घूरते रहे, फिर इन पर बेबसी की झिझलाहट सी छा गई और कोई चाराकार ना देखते हुए वो एक झटके के साथ उठे और खामोशी से दरवाजे की चुटकनी खोलकर बाहर निकल गए। खस्तम जहां पाक, इमरान ने उठकर दरवाजे को दोबारा बंद करते हुए कहा। अफजल खामोशी से इमरान की हरकत देख रहा था। इमरान दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। इसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि नवाब साहब यहाँ से चल जाएं। और फिर उठकर उसने अफजल के बंधे हुए हाथ खोल दिए। अफजल इसकी शख्सियत से कुछ इस तरह मुतासिर हो चुका था कि इसने हाथ खोलने के बावजूद कोई हरकत नहीं की। देखो अफजल, जो कुछ तुम्हारे इल्म में हो मुझे सही से ही बता दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बचा लिया जाएगा और तुम्हारे खिलाफ जो ब्लैक मेलिंग स्टफ शैतानों के पास है वो भी हासिल करके मैं तुम्हें दे दूंगा। वरना जानते हो तुम्हारे जुर्म की सजा नवाब साहब के पास क्या है? इमरान ने इसे संजीदगी से समझाया। इमरान साहब मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं बेहद मजबूर था। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मेरे इल्म में है। अफजल का लहजा इंतहाई आजिज़ाना था। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, इमरान ने इसे तसल्ली दी। साहब, आज से एक साल पहले मुझे खत मिला जिसमें वो ब्लैक मेलिंग स्टफ था। वो मेरी एक गलती थी और वो एक ऐसी चीज थी कि अगर वो मंजर आराम पर आ जाती तो यकीनन मैं खुदकुशी कर लेता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस ब्लैक मेलिंग की वजह से मजबूर होकर मैं इनका आयकार बन गया। मेरे जिम्मे सिर्फ इतना काम था कि मैं नवाब साहब की तमाम मसरूफियात, बातचीत, खत और किताबत की इतला इन्हें भेजता रहता। चूंकि मैं नवाब साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी था और नवाब साहब को मुझ पर एतमाद था, इसलिए मुझे इनके मुतालबात पूरे करने में कोई तकलीफ ना हुई। आज से कुछ दिन पहले नवाब साहब ने किसी सर सुल्तान से बातचीत की और कोई आदमी जंगलात की तहकीकात के लिए मंगवाया। इसकी इतला मैंने इन्हें भिजवा दी। इन्होंने मेरे जिम्मे ये काम लगाया कि जैसे वो आदमी आए हमें इतला देना। आपकी आमद पर मैंने इन्हें इतला देनी चाहिए, लेकिन मेरा ट्रांसमीटर खराब हो गया, अफजल ने तफसील से बताते हुए कहा। तुम रबता ट्रांसमीटर से भी रखते हो? इमरान ने सवाल किया। जी हाँ, इन्होंने मुझे एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी दिया हुआ है जिस पर मैं इनको तमाम इत्तलात देता हूँ। बहरहाल काफी देर बाद वो ट्रांसमीटर ठीक हुआ, लेकिन इस वक्त आपकी जीप वापस आ गई थी। मैंने इन्हें तमाम तफसीलात बता दी। इन्होंने मुझे आपको गोली मारने का हुक्म दिया और मैंने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बाकी सूरत हाल आपके सामने है, अफजल ने तमाम हालात बताते हुए कहा। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? इमरान ने पूछा। इस महल के शुमारी कोने में मुझे क्वार्टर मिला हुआ है, अफजल ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ सब लोग पहचानते होंगे? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैं गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, अफजल ने जवाब दिया। तो फिर तुमने सियाह कपड़े और मुंह पर निकाब डालकर मुझे कतल करने की कोशिश क्यों की? इमरान ने सवाल किया। इमरान साहब, मैंने इससे निकाब लगाया था कि आपके कत्ल की तहकीकात जरूरी होनी थी, और बगैर निकाब के मुझे कोई देख लेता तो मुझे पकड़ लिया जाता, लेकिन इस तरह तमाम इल्जाम किसी निकाब पोश पर लग जाता। अफजल ने जवाब दिया, तुम्हारी अकलदार निकल चुकी है। इमरान ने अचानक सवाल किया, अब इसके चेहरे पर दोबारा हिमाकतों की जलवा गिरी थी। जी, अफजल ने हैरत से पूछा। इसकी समझ में इमरान की शख्सियत नहीं आ रही थी, जो पल पल में रूप बदल देता था। मकसद ये कि तुम तो बहुत ज़हीन निकले, इमरान ने कहा, और अफजल शर्मिंदा अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा मिस्टर अफजल, अब तुम ऐसा करो कि तुम बसतूर अपनी जगह काम करते रहो, लेकिन शर्त यह कि अब तुम जो इतला इन्हें दोगे वो मुझे भी बताया दिया करो, और जो हुक्म इनसे मिले वो भी मुझे बता दिया करो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, इमरान ने कहा। लेकिन नवाब साहब, अफजल ने कदर झिझकते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर लूंगा। इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर ठीक है, अफजल ने मुतमईन लहजे में कहा। अच्छा ये बताओ, जब तुम ट्रांसमीटर पर बातचीत करते थे तो क्या कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, इमरान ने पूछा। यही 10 करोड़ में दो शैतान, अफजल ने जवाब दिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, इमरान ने कहा, और फिर खुद उठकर अपने कमरे से बाहर चला गया। वो नवाब साहब को ढूंढता रहा। नवाब साहब अपने कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। इनके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। वो इमरान को आते देखकर इसकी तरफ लपके, क्या हुआ, कुछ पता चला, नवाब साहब ने पूछा। आप घबराएं नहीं नवाब साहब, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने कहा, और फिर इसने सारी तफसील बताई। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन केस खत्म होने के बाद मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, नवाब साहब ने कहा। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा, इमरान नवाब साहब को तसल्ली दी, और फिर इसने इजाजत लेकर वापस चला गया। इसने अफजल को तसल्ली दी और भेज दिया। जोरबल इस शख्स को आगे लगाए हुए चला जा रहा था। दो गलियों से गुजरने के बाद वो एक कमरे में आ गया। इस शख्स ने दीवार के एक तरफ लगे हुए बटन को हल्के से दबा दिया। जोरबल खामोशी से खड़ा देखकर इस वक्त चौंका, जब अचानक एक जोर की आवाज से इसके चारों तरफ दबी शीशे का एक गिलास आ गया। वो शीशे की चार दीवारी में कैद हो गया था। शीशे की दीवारें अचानक फरश से निकली थी। इन शीशों पर ब्रेन गन की गोलियों का कोई असर ना हुआ, बल्कि गोलियों जैसे ही शीशे से टकराती छिपती हुई नीचे गिर पड़ती। निकाबपोश ने इसे अंधाधुंध गोलियां बरसाता देखकर बेख्तियार कहके लगाने शुरू कर दिए। अचानक बाहर गैलरी में भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। इस निकाबपोश के कहके हलक में घुर गए। फिर दरवाजे से तीन निकाबपोश, जिन्होंने हाथों में ब्रेन गने उठाई हुई थी, अंदर दाखिल हुए। वो शायद ब्रेन गन चलने की आवाज सुनकर आए थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, जोरबल को शीशे के कमरे में बंद देखकर एक लम्हे के लिए छिटक गए। फिर इनका रुख दूसरे निकाब पोस्ट की तरफ हो गया, जो अब तक बटन के करीब खड़ा था। क्या बात है, कौन है ये, आने वालों में से एक ने कड़कते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं 24 हूँ सर, मुझे ये निकाब पोस्ट बरामदे में मिला। इसके हाथ में ब्रेन गन थी, इसने ब्रेन गन के जरिए जोर पर मुझे मजबूर किया। मैं इसे बाहर जंगल में ले जाऊं, मैं ये समझ गया कि हम में से नहीं, चनाचा मैंने नहायत छोटी से यहाँ कैद कर लिया, इसने तफसील बताते हुए कहा। जोरबल इस वक्त खामोशी से हाथ में ब्रेन गन लिए खड़ा था। वो समझ गया कि नानावस्थिनी में वो बुरी तरह फंस चुका है। नंबर 24, तुमने इंतहाई जहानत से काम दिया है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट शैतान को जरूर पहुंचाऊंगा, निकाब पोष ने कहा। अब तुम जाओ, इसी लीडर ने कहा, और 24 खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। तुम ब्रेन गन उछाल कर बाहर फेंक दो, अब इसी निकाब पोष ने जोरबल को हुक्म देते हुए कहा। क्यों, बाहर दूं, मेरे हाथ में पकड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, जोरबल ने लापरवाही से जवाब दिया। एक लम्हे तक वो निकाबपोश खामोशी से जोरबल को देखता रहा, और फिर मेन स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया, जहां से बटन दबाने पर शीशे की दीवारें फर्श से निकली थी। इसने जाकर एक बटन दबाया। बटन दबते ही पहले जूजू की आवाजें आती रहीं, फिर अचानक इन दीवारों के अंदर जर्द रंग का धुआं फैलने लगा। हालांकि शीशे की दीवारों और ऊपर छत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जर्द धुआं नीचे दीवारों के साथ साथ नीचे ही नीचे फैल रहा था। इसका रुख ऊपर की तरफ नहीं था। धुआं निकलते ही जोरबल को यूं महसूस हुआ जैसे वो हमें मुअल्लिक हो गया हो। इसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। फिर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सारे जिस्म में जान बाकी ना रही हो। इसी लम्हे ब्रेनगन इसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर जा पड़ी। जोजफ की आंखें बंद होने लगी, वो कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोलने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो एक झटका खाकर फर्श पर जा गिरा। वो बेहोश हो चुका था। निगाह पोछ ने बटन ऑफ कर दिया, धुआं बड़ी तेजी से गायब हो गया। इसने दूसरा बटन दबाया और शीशे की दीवारें वापस फर्श पर घुस गईं। अब जोजफ कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ा था। ब्रेनगन इसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिरी हुई थी। आने वाले निकाह पोछ ने फुर्ती से वो ब्रेनगन उठा ली और दूसरे निकाह पोछ ने आगे बढ़कर इसके चेहरे से निकाह हटा दी। इसे उठाकर नंबर टू के पास ले जाओ, निकाह पोछ ने हुक्म दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। बाकी निकाह पोछों ने जोजफ को उठाने की कोशिश की। जोजफ इनसे उठ गए तो गया, लेकिन इसके लिए इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी कि वो दो कदम चलने के बाद पसीने में नहा गए। जोजफ काफी से ज्यादा वजनी था और फिर बेहोश आदमी का वजन वैसे भी मामूल से ज्यादा हो जाता है। बहरहाल किसी न किसी तरह वो दोनों जोजफ को खींच खांच कर नंबर टू के कमरे में ले जाने में कामयाब हो गए। नंबर टू अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। इसने एक नजर बेहोश जोजफ की तरफ देखा और फिर वो दोबारा कमरे में टहलने लगा। बाकी निकाह पोछ एक तरफ मौजूद खड़े थे। तुम्हें इल्म है कि इसने 04 और इसके दो साथियों को अकेले मार मार कर बेहोश कर दिया है, नंबर टू ने टहलते टहलते अचानक रुक कर कहा। ओहो सर, बड़ी हैरत अंगेज बात है, एक निकाह पोछ ने शदीद हैरत आमेज लहजे में जवाब दिया। इसे पहले अच्छी तरह बांध लो, फिर इसे होश में ले आओ, नंबर टू ने इन्हें हुक्म दिया। और निकाह पोछों ने फुर्ती से जोजफ को उठाकर कमरे के दरमियान पड़ी हुई एक बहुत बड़ी मेज पर लिटा दिया। मेज की साइडों पर चमड़े के मोटे मोटे तस्मे फिट थे। इन तस्मों के जरिए जोजफ के बेहोश जिस्म को अच्छी तरह कस दिया गया। एक निगाह पोछ ने आगे बढ़कर कोने में फिट एक छोटी सी अलमारी खोली और अलमारी के ऊपर वाले खाने से एक जर्द रंग की शीशी उठाकर जोजफ की तरफ मुड़ा। इसने जोजफ के करीब आकर शीशी इसकी नाक से लगा दी। तकरीबन एक लम्हे बाद जोजफ ने कसमसाना शुरू किया और फिर इसे जोरदार छींक आई। निकाह पोछ ने शीशी हटा ली। जोजफ ने आंखें खोल दी, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसने उठने के लिए जोर लगाया, लेकिन तस्मों में कसा होने की वजह से वो हिलने से माजूर था। इसने सुर्ख आंखों से चारों तरफ देखा। इसका चेहरा शरीर गुस्से की वजह से बिगड़ा हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई रीछ बेबस पड़ा हो। कौन है तुम, अचानक नंबर टू ने कड़कते हुए लहजे में पूछा। पहले मुझे शराब दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, जोजफ ने चाहे उसे लहजे में कहा। शट अप, बकवास मत करो वरना तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। नंबर टू अपने स्टंटों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका। जोजफ खामोश रहा, इसने कोई जवाब ना दिया। बताओ कौन हो तुम, नंबर टू ने दोबारा पूछा। पहले शराब दो, जोजफ ने वही जवाब दिया। मेरा हंटर निकाल लाओ, अचानक नंबर टू ने एक निकाह पोछ को हुक्म दिया और निकाह पोछ फुर्ती से इसी अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद नंबर टू के हाथ में एक बहुत बड़ा और खौफनाक हंटर लहरा रहा था। बताओ कौन हो तुम, इसने हंटर को लहराकर इससे एक खौफनाक कड़क पैदा करते हुए कहा। शराब, जोजफ ने इसी लम्हे में लहजे में कहा और इसी लम्हे हंटर की जद से जोजफ के बाजू से खून टपकने लगा और फिर तो नंबर टू वैसी बन गया। इसने अंधाधुंध जोजफ के बंधे हुए जिस्म पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। शराब शराब की आवाजों से कमरा गूंज उठा। तमाम निकाह पोछ कमरे के कोनों में सहमे हुए खड़े थे, लेकिन हंटर की शराब से ज्यादा ऊंची आवाज जोजफ के मुंह से निकल रही थी। तकरीबन इसी आवाज से मिलती जुलती शराब 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 शराब, जोजफ का सारा जिस्म लहूलुहान हो गया। चेहरे पर हंटर की जरबात से आड़ी तिरछी सुर्ख लकीरों का जाल सा बन गया था। जोजफ आंखें बंद किए लगातार शराब शराब की रट लगाए हुए था। एक दफा भी इसके मुंह से सुस्कारी ना निकली। वाकई कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा थी। बॉस, अचानक एक निकाह पोछ बोल उठा। क्या है, नंबर टू ने गुस्से से फनकारते हुए कहा। बॉस, मेरे ख्याल में यह शख्स शराब का बहुत रसियार है और इसीलिए शराब मांग रहा है, निकाह पोछ ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा। नंबर टू ने सोचते हुए कहा। कौन सी शराब पियोगे, अचानक नंबर टू ने जोजफ से मुखातिब होते हुए कहा। वहस की, जोजफ ने आंखें खोलकर नंबर टू की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वहस की एक बोतल लाओ, नंबर टू ने एक निकाह पोछ को हुक्म दिया। नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, जोजफ ने टोक दिया। फिर नंबर टू ने हैरत से कहा। मैं 10 बोतलों से कम नहीं प्यार करता, जोजफ ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या कहा दस? नंबर टू हैरत से चीख पड़ा। इसकी आंखों से बेयकीनी साफ आया थी। हाँ हाँ दस, लेकिन तुम हैरत ज़रा क्यों हो गए? क्या ज्यादा हैं? जोसेफ ने इस तरह कहा जैसे वो दस बोतलों को परखा की हैसियत भी ना दे रहा हो। लेकिन तुम दस बोतलें पीते पीते तो चार दिन लगा दोगे, नंबर टू ने कहा। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, जोसेफ ने जवाब दिया। आधा घंटा दस बोतलें पीने के बाद हमारे सवालों का जवाब दोगे? नंबर टू का लहजा अरब नरम था। हाँ हाँ क्यों नहीं, जोसेफ ने इसे तसली दी। ओके नंबर थ्री एलवन, इसके लिए दस बोतलें बहसी की ले आओ और तुम नंबर डबल सिक्स इसके जख्मों की बैंडेज करो। नंबर टू ने दो निकाह पोशों को हुक्म देते हुए कहा, बैंडेज बैंडेज, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा गंदा खून जिसम से निकल जाए तो अच्छा होता है। जोसेफ ने ये अल्फाज कुछ इस तरह बेपरवाही से कहे जैसे उसके जिसम पर एक हल्की सी खराश आई हो और इससे दो तीन कतरे खून टपक गए हों। हालांकि इसका सारा जिसम लहूलहान हो रहा था, चेहरे पर सारा खून ही खून फैला हुआ था। नंबर टू जोसेफ की बहादुरी और कुव्वत बर्दाश्त से मरूब हो गया। मरूबियत के आसार इसकी आंखों से साफ तौर पर वाजे थे। इतने में श्री एलवन एक ट्रॉली में दस बोतलें महस की रखे कमरे में दाखिल हुआ। इससे ट्रॉली जोसेफ की मेज के करीब खड़ी कर दी। इसके हाथ खोल दो, नंबर टू ने हुक्म दिया और श्री एलवन ने आगे बढ़कर जोसेफ की गर्दन सीने और हाथ पर बंधे हुए कसमे खोल दिए। जोसेफ इसी मेज पर बैठ गया। अभी तक इसकी टांगें मेज से बंधी हुई थी। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर ट्रॉली से एक बोतल उठाई, इसका ढकना तोड़ा और फिर इसे मुंह से लगा लिया। तमाम निकाबपोश हैरत से मंजर देख रहे थे। जोसेफ ने बोतल को इस वक्त मुंह से अलहदा किया जब इसका आखिरी कतरा भी इसके हलक में पहुंच गया। जख्मों की वजह से इसकी प्यास बढ़ गई थी, वो बोतलों पर बोतलें चढ़ाता चला गया। सब निकाबपोश इसे इस तरह हैरत से देख रहे थे जैसे इनके सामने दुनिया का आठवां अजूबा आ गया हो या कि बच्चों के सामने जैसे कोई मदारी हैरत अंगेज खेल दिखा रहा हो। वाकई थी भी हैरत अंगेज और निराली बात कि एक आदमी व्हिस्की की बोतल पर बोतलें चला जाए बगैर सोडा या पानी मिलाए। जोसेफ ने सात बोतलें पीकर कदर इत्मीनान का सांस लिया। अब इसका दिमाग रोशन हो रहा था, इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आता जा रहा हो। तुम कहीं नशे में आउट ना हो जाओ, नंबर टू ने बोतलों की तादाद और जोसेफ के पीने के अंदाज से घबराते हुए कहा। मिस्टर में 50 बोतलें और पी जाऊं तब भी मैं आउट नहीं हो सकता, जोसेफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर इसने दसवीं बोतल भी मुंह से लगा ली। शराब के अलावा इन्हें हैरत इस बात पर थी कि बहरहाल नशा एक तरफ रहा, दस बोतलों में अच्छा खासा सियाल आ जाता है। एक आदमी के पेट में इतना सियाल एक वक्त कैसे जा सकता है? लेकिन सब कुछ निकाबपोशों के सामने हो रहा था और वो हैरत से बुत बने हुए थे। यकीनन करना ही पड़ रहा था। जोसेफ ने दसवीं बोतल का आखिरी कतरा भी हलक में उंडेल लिया और फिर इसने बोतल मुंह से अलहदा की। दूसरे लम्हे धमाका हुआ और बोतल नंबर टू के सर पर जा पड़ी। वो लहराता हुआ वहीं फर्श पर ढेर हो गया। ये कारनामा जोसेफ का था। वाकई दस बोतलें पीकर इसे होश आ गया था। इससे पहले के दूसरे निकाबपोश कुछ समझते, जोसेफ ने इन पर खाली बोतलों की बारिश कर दी। खाली बोतलें इसकी मेज पर पड़ी हुई थी। इसकी फुर्ती और तेजी काबिले दीद थी। चंद ही लम्हों बाद तमाम निकाबपोश फर्श पर ढेर पड़े थे। इनके सरों से खून तेजी से बह रहा था। जोसेफ ने जल्दी जल्दी अपनी टांगों पर कसे हुए तस्मे खोले और फिर उछलकर मेज से नीचे उतर आया। इसने कमरे का दरवाजा खोलकर इधर उधर झांका। ये दरवाजा एक तवील गैलरी में वाकया था। गैलरी सुनसान थी। जोसेफ ने सोचा अगर इस तरह मैं बाहर निकला तो रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा और फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा। इसने एक तरकीब सोची और फिर इसने निकाबपोशों को उठा उठाकर सोफों के पीछे डालना शुरू कर दिया। इसने अपना खून आलूद लिबास उतारकर नंबर टू को पहना दिया और खुद इसका लिबास पहन लिया। चेहरे पर इसका सुर्ख निकाब चढ़ा दिया गया। वो जोसेफ का नंबर टू का लिबास बड़ी मुश्किल से आया था क्योंकि नंबर टू जिसम में इससे हल्का था, लेकिन बहरहाल इसने किसी न किसी तरह से पहन लिया। इसने नंबर टू के चेहरे पर भी निकाब ओढ़ लिया। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। इसने कोने वाली मेज में लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद दो निकाबपोश हाथों में ब्रेनगन लिए कमरे के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने दूसरे झुकाकर मौदबाना अंदाज में जोसेफ को सलाम किया। देखो इसको उठाकर मेरे साथ चलो, मैं इसे जंगल में फेंकना चाहता हूँ, जोसेफ ने हत्ता और वसा नंबर टू की आवाज निकालते हुए कहा। बॉस बॉस निम निम मगर, हम खुद ही छोड़ आएंगे, आप क्यों तकलीफ करते हैं, इनमें से एक ने डरते डरते कहा क्योंकि वो कमरे के माहौल पर एक नजर डाल चुका था। तमाम कमरे में खून फैला हुआ था। टूटी हुई बोतलों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। मेज खून से लथपथ थी। इसने सोचा, बॉस आज इंतहाई गुस्से में है। शट अप, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जदा गुस्से से धाड़ा। दोनों निकाह पोछ सहम गए। नंबर टू का गुस्सा देखकर इनके औसान भी खता हो गए। इन्होंने ब्रेन गन एक तरफ रख दी और फिर फुर्ती से झुककर बेहोश नंबर टू को उठा लिया। जोसेफ ने आगे बढ़कर एक ब्रेन गन उठा ली और फिर वो दोनों निकाह पोछ अपने बॉस नंबर टू को कांधे पर लादे आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे जोसेफ नंबर टू का रूप धारे हाथ में ब्रेन गन पकड़े चल रहा था। रास्ते में कई निकाह पोछों से टकराव हुआ, लेकिन वो जोसेफ के चेहरे पर सुर्ख निकाब देखकर अदब से झुक जाते। जोसेफ गैलियन से गुजरते हुए एक बार फिर इसी कमरे में पहुंच गया जहां इसे शीशे की दीवारों में कैद किया गया था। एक निकाब पोछ ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। एक ही लम्बे में सीढ़ियां नीचे लटक आई। वो सब सीढ़ियां चढ़ते गए। सीढ़ियों के खिताब पर एक दरवाजा मौजूद था। दरवाजे के हैंडल को निकाब पोछ ने तीन बार मखसूस अंदाज में घुमाया तो दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल आए। जोसेफ ने बाहर निकल कर देखा और फिर इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने देखा कि वो एक बहुत बड़े दरख्त के तने से निकले हैं। इनके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद हो गया। अब महसूस भी नहीं होता था कि दरख्त में भी दरवाजा हो सकता है। इस वक्त सुबह साजिश हो रही थी। जंगल परिंदों की मुख्तलिफ आवाजों से गूंज रहा था। जोसेफ ने दरख्त को जहन में रख लिया। फिर वो जनूबी साइड में आगे बढ़ने लगा। काफी दूर आने के बाद वो रुक गया। इसे यहीं डाल दो, इसने निकाब पोशों को हुक्म दिया और निकाब पोशों ने नंबर टू को नीचे घास पर डाल दिया। इसी लम्हे जोसेफ ने अपने चेहरे से निकाब उतार दी। निकाब पोश इसी की शक्ल देखकर हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बात करते, जोसेफ के हाथ में पकड़ी हुई ब्रेन गन पूरे जोर से गुनगुनाई और दोनों निकाब पोशों के जिस्म में सैकड़ों गोलियां पेवस्त हो गई। एक लम्हे के लिए निकाब पोशों का जिस्म हवा में लहराया और फिर वो धमाके से घास पर जा गिरे। वो बगैर कोई आवाज निकाले ढेर हो गए। जोसेफ ने फुर्ती से नंबर टू के चेहरे से निकाब उतार दी और फिर उसे उठाकर कांधे पर डालने लगा, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि नंबर टू खत्म हो चुका था। इसलिए वो तन्हाई तेजी से जंगल में दौड़ता चला गया। आधी रात का वक्त था। सड़कें बेवा की मांग की तरह खाली थी। खंभों पर लगे हुए बिजली के कम पावर बल्ब अंधेरे के खिलाफ जंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कभी कभी कोई कार वहां से गुजरती तो अंधेरा वक्ती तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता था, लेकिन इसके गुजरने के बाद फिर इसकी बादशाहत होती। जंगल इस वक्त इंतहाई भयानक लग रहा था। गहरी तारीखें खौफनाक और आसाब शिकन थी, लेकिन एक मोटरसाइकिल जिसका हेडलैम्प तारीख था जंगल में बनी हुई छोटी सी पगडंडी पर दौड़ रही थी। मोटरसाइकिल की रफ्तार काफी तेज थी। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान शख्स था जो जिस्मानी लिहाज से दुबला पतला था, लेकिन इसकी आंखें अंधेरे में बिल्लियों की तरह चमक रही थी। इसके जिस्म पर सिया लिबास था। अचानक जंगल शेर की खौफनाक से धार गूंज उठा, लेकिन मोटरसाइकिल एक लम्हे के लिए भी ना लहराई, जिससे साफ जाहिर था कि मोटरसाइकिल सवार मजबूत आसाब का मालिक था। अब वो जंगल के दरमियान पहुंच चुका था। इसने मोटरसाइकिल रोक दी और फिर स्टैंड पर खड़ी करके वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो बगौर चारों तरफ देख रहा था। फिर इसने अपनी कलाई में बनी हुई रेडियम डायल घड़ी पर एक नजर डाली और फिर जेब से एक अजीब सा पिस्तौल निकाल लिया। इसने पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। एक हल्के से जन्नाटे के साथ कोई चीज नाली से निकलकर फिजा में परवास कर गई और फिर दूर एक सितारा सा चमका और फिर लकीर बनाता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। ये एक मखसूस सिग्नल था। इसने पिस्तौल वापस जेब में डाला और फिर बगौर आसमान की तरफ देखने लगा। तकरीबन एक मिनट के बाद इसे आसमान पर इसी तरह का एक सितारा टूटता हुआ नजर आया। दूसरे सितारे को देखकर वो चौंक पड़ा। इसकी आंखों में इस्तराब नुमाया हो गया। दूसरे सितारे के चंद मिनट बाद तीसरा सितारा भी टूटता नजर आया। इसके इस्तराब में कुछ कमी आ गई। इसने फुर्ती से मोटरसाइकिल संभाला और फिर मोटरसाइकिल आगे दौड़ने लगी। अब इसकी रफ्तार पहले से ज्यादा थी। इसका रुख शुमाल की तरफ था। काफी दूर जाने के बाद अचानक दूर से एक दरख्त पर एक जुगनू सा चमकता देखकर इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता कर दी। थोड़ी दूर जाकर इसने मोटरसाइकिल रोक दी। फिर अचानक दरख्तों की ओट से चंद साए निकले और इन्होंने इसे फुर्ती से घेर लिया। इन सब के हाथों में भारी ब्रेन गने थी। कोड इनमें से एक ने कड़क लहजे में पूछा। 10 करोड़ में दो शैतान, इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इन सबकी ब्रेन गने नीची हो गई। गुड नाइट सर, पूछने वाले ने इंतहाई मादवाना लहजे में कहा। गुड नाइट, नौजवान ने जवाब दिया। तशरीफ लाइए सर, उसने कहा। पोस्ट ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। नंबर टू कहाँ है, नौजवान ने आगे बढ़ने के बजाय हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। आप तशरीफ लाइए, आपको सारी तफसील अभी बतला दी जाएगी, इस आदमी ने जवाब दिया और फिर नौजवान चल पड़ा। थोड़ी दूर एक बहुत बड़े दरख्त के तने के करीब पहुंचने के बाद ले जाने वाले नौजवान ने ना जाने क्या किया कि अचानक तने में एक दरवाजा बन गया और फिर वो नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद वो नौजवान एक सदे सजाए कमरे में मौजूद था। इसके सामने वो निकाबपोश खड़े थे जो इसे यहाँ तक लाए थे। सर, कल रात यहाँ जंगल में दो आदमी घुस आए थे, हमने इन पर बार बार इस्तेमाल किए लेकिन वो बच गए। अचानक एक शेर इधर आ निकला और फिर इनमें से एक आदमी शेर से उलझ पड़ा, नतीजतन वो शेर के हाथों शरीर जख्मी होकर खत्म हो गया। दूसरे को गिरफ्तार करके हम यहाँ ले आए। वो एक लंबा तड़ंगा नेगरू था, यहाँ से इसने एक दफा भागने की कोशिश की लेकिन हमारे आदमी की जहानत की वजह से इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बॉस नंबर टू इस पर अपने कमरे में तशद्दुद कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे लेकिन वो निगरो न जाने कैसे हमारे चार आदमियों का सर फाड़कर नंबर टू पर गालिब आ गया और फिर नंबर टू का रूप इख्तियार करके वो अड्डे से बाहर निकल गया। नंबर टू की लाश हमें जंगल में मिली, निकाबपोश ने कहा। अड्डे के बाहर मौजूद निगरानों ने इसे चेक नहीं किया। नौजवान जो मिर्जा अशफाक खान ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा, दरअसल वो भी इसके नंबर टू वाले निकाब से धोखा खा गए, निकाबपोश ने अदब से कहा। मिर्जा अशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा। चल न मेरा, कुछ सोचने के बाद वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है नंबर थ्री, अब मैं खुद यहाँ मौजूद रहूंगा, मामला कुछ सीरियस होता जा रहा है, मिर्जा अशफाक ने कहा। हमें खुशी होगी सर, नंबर थ्री ने जवाब दिया। अच्छा चलो मुझे प्रोडक्शन दिखाओ, मिर्जा अशफाक ने कहा। यस सर, नंबर थ्री ने कहा। फिर मिर्जा अशफाक इनकी रहनुमाई में कमरे से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील सफदर और जौलिया सर रियासत प्रेम नगर के होटल सनराइज में मौजूद थे। वो आज पहली मकामी फ्लाइट से यहाँ पहुंचे थे। एक्सेटो ने इमरान की मदद के लिए भेजा था। एक्सेटो ने यही बताया था कि वो होटल सनराइज में जाकर ठहरे, इमरान खुद इनसे रब्ता कायम करेगा लेकिन शाम तक। इमरान ने इन्हें इनसे रब्ता कायम नहीं किया था। वो तीनों शख्स बोर रहे थे, तीनों अलग अलग कमरों में थे और एक्सेटो की हिदायत के मुताबिक इन्होंने आपस में शनासाई भी जाहिर नहीं की थी। वो होटल से बाहर भी नहीं जा सकते थे कि ना मालूम किस वक्त इमरान रब्ता कायम करे। इस वक्त तीनों डाइनिंग हॉल में अलग अलग मेजों पर मौजूद थे। कैप्टन शकील के करीब वाली मेज पर दो मकामी बैठे हुए चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। अचानक इनमें से एक की आवाज कैप्टन शकील के कानों में पड़ी। मैं कहता हूं जरूर कोई गैर मुल्की पार्टी हमारे मुकाबले में आ गई है, एक आदमी ने कहा। लेकिन गैर मुल्की पार्टी को हमारे मिशन का पता कैसे चला, दूसरे शख्स ने बोला। कैप्टन शकील को मामला कुछ पुरेसरार लगा और वैसे भी वो फारिग था, इसलिए वो दफा अलवक्ती के लिए इनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। इस पर तो मुझे भी हैरत है। हाँ, अगर नौशीना खुदकुशी ना कर लेती तो राज मालूम हो जाता, पहले नौजवान ने कहा। वैसे एक बात कहूँ, बॉस ने इस पर तशद्दुद भी इंतहाई भयानक अंदाज में किया था, दूसरे ने कहा। हाँ बॉस इंतहाई सख्त दिल और चालाक है, इसलिए तो वो शैतान के नाम से मशहूर है, ताले नौजवान ने कहा। वैसे वो गैर मुल्की नौजवान फिर कहीं नजर नहीं आया, दूसरे नौजवान ने कहा। इसे ढूंढने की बेहद कोशिश की गई है लेकिन वो तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, पहले नौजवान ने कहा। आज बॉस का क्या प्रोग्राम है, दूसरे नौजवान ने कहा। आज बॉस ने तमाम आदमियों को हुक्म दिया है कि वो शहर में फैल जाएं और मुश्तबा आदमियों पर नजर रखें, क्योंकि मिशन तकमील के करीब है, इस वक्त भी इंतहा एहतियात की जरूरत है, पहले नौजवान ने कहा। क्या सिर्फ गैर मुल्की लोगों पर नजर रखनी है, दूसरे ने पूछा। ये जरूरी नहीं, जो भी मुश्तबा नजर आए, पहले ने कहा। कैप्टन शकील समझ गया कि ये मामला बाकी पुरेसरार है लेकिन अब वो इस शीशोपन में था कि आया इसका ताकुब करके कुछ मजीद मालूम हासिल की जाए या इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये बिल्कुल गैर मुतालिक मामला हो और खामखा वक्त ज़ाया होने का बायस बने। पार्ट फोर यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। किताब 10 करोड़ में दो शैतान का वाकिया हिस्सा पार्ट 5 में समाप्त फरमाइए।